आपके सामने सर्ष प्रस्तुत करने जा रही है एकांकी नाटिका तीसरी आंख थर्ड आई।
समस्त विश्व पर जिनका आधिपत्य है, जिनके राज्य में भौतिक सुखों की भरमार है, पांच तत्व भी जिनके आदेश का पालन करते हैं, ऐसी विश्व महासम्राज्ञी माया महारानी राज्य दरबार में पधार रही है। माया महारानी की माया महारानी की माया महारानी की माया महारानी की रानी सरकार
जिंदाबाद,
रानी सरकार
जिंदाबाद,
रानी सरकार
जिंदाबाद,
रानी सरकार
जिंदाबाद।
आज हमारे राज्य को 2500 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक सफलता की मंजिलें हमने तय की है। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता, विकर्म करने की सत्ता, हर क्षेत्र में हमने कामयाबी हासिल की है। इस वर्ष हमने सप्त चिरंजीवों का सत्कार करने का सोचा है, इसलिए सेनापति प्रशंसा पुत्र, उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हुई या नहीं?
जी रानी सरकार, सभी तैयारियां पूरी हुई है।
नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 माया रानी की जय हो, माया रानी की जय हो।
आइए मुनिवर, आपके दर्शन से हम प्रसन्न हुए, और साथ में
ये ज्ञानेंद्र सूक्ष्म लोक से आते समय इनका परिचय हुआ। हर ज्ञान के राज को जानने में बड़े माहिर है। इनके साथ वार्तालाप करते करते हम आपके दरबार में पहुँचे। नारायण नारायण,
आप दोनों ही का दरबार में स्वागत है।
रानी सरकार की जय हो, रानी सरकार की जय हो।
अच्छा देवर्षि, इंद्रलोक का क्या समाचार है?
मैं इंद्रलोक का नहीं, पृथ्वीलोक का ही समाचार सुनाने आया हूँ। नारायण नारायण,
यहाँ का समाचार होते हुए हमारे कानों तक नहीं? क्या कर रही है हमारी गुप्तचर संस्था?
नहीं रानी सरकार, ऐसी बात नहीं, आज हमें चिरंजीवों के दर्शन हुए। नारायण नारायण।
चिरंजीवों के दर्शन?
जी हाँ, आपने भेजा हुआ निमंत्रण पत्र पढ़ रहे थे और वे भी इधर ही आने की तैयारी कर रहे थे। नारायण नारायण।
आप दोनों ही यहाँ अच्छे मौके पर पधारे हो देवर्षि, आज हमने उनके सत्कार समारोह का आयोजन किया है।
रानी सरकार, आप बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि चिरंजीवों के दर्शन सभी को नहीं होते हैं, कोई विरला ही इन्हें देख पाता है।
और इनके दर्शन भी समय अनुसार होते हैं, चाहे रामायण काल हो या महाभारत काल, मायापुरी हो या कंसपुरी, द्वापर युग हो या कलयुग, दोनों ही युगों में यह प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। लेकिन इन्हें देखने के लिए चाहिए तीसरी आंख, वरना आंखें होते भी जैसे अंधे हैं। चिरंजीव का अर्थ ही है अनंत काल तक जीने वाले, छोटों को चिरंजीवों का आशीर्वाद देते हैं ना। नारायण नारायण।
रानी सरकार, शायद चिरंजीवों का आगमन इधर ही हो रहा है। चिरंजीव राजा बलि की जय हो, चिरंजीव राजा बलि की जय हो, चिरंजीव अश्वत्थामा की जय हो, चिरंजीव अश्वत्थामा की जय हो, चिरंजीव कृपाचार्य की जय हो, चिरंजीव कृपाचार्य की जय हो।
इस खुशी के मौके पर सभी अतिथियों का स्वागत नृत्य से किया जाए।
नारायण अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः रूप परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। रानी सरकार, अगर आज्ञा हो तो सत्कार मूर्ति की चरित्र गाथा जनता जनार्दन के सामने रखे, पधारे हुए समाज सेवकों के सामने रखे।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़े शौक से।
असुल में राजा बलि आसुरी संप्रदाय के है और इनके गुरु शुक्राचार्य है। पृथ्वी पर सार्वभौम राज्य स्थापन करने के बाद देवलोक पर राज्य करने के लिए शुक्राचार्य की प्रेरणा से सत्कार मूर्ति राजा बलि ने यज्ञ किया और इंद्र का आसन जीत लिया।
राजा बलि की जय हो, राजा बलि की जय हो।
फिर इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। इनका सत्व भंग करने के लिए विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। जब प्रभु वामन ने ब्राह्मण रूप लेकर राजा को तीन पैर जगह दक्षिणा में मांगी तो राजा ने विशाल दिल से बड़ी उदारता से दे दी। एक पैर पृथ्वी पर, दूसरा पैर आकाश में और तीसरा पैर रखू कहाँ तो बोला रखो मेरे सिर पर। ब्राह्मण ने जैसा ही तीसरा पैर राजा के सिर पर रखा तो वे पाताल में चले गए। राजा की उदारता देख विष्णु ने उन्हें सदा काल के लिए अमर लोक स्वर्ग में स्थान दे दिया और वे चिरंजीव बन गए। बोलो राजा बलि की जय हो, बोलो राजा बलि की जय हो।
देवर्षि, लेकिन वे चिरंजीव कैसे हैं? यह राज भी तो स्पष्ट करो।
नारायण नारायण, इस बारे में तो ज्ञानेंद्र ही आप सभी को बताएंगे। क्यों ज्ञानेंद्र?
आप चाहते हो तो ठीक है। भाइयों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा ही तो आज समाज में हो रहा है ना। लोकशाही हो या हुकुमशाही, दोनों में ही बल की जरूरत होती है। एक में मतों का बल, दूसरे में बाहुबल। चुनकर भी वही आता है जिसके पास है पक्ष का बल। समाज का बल पक्ष का बल, धर्म का बल पैसे का बल, राजनीति का बल, शब्दों का बल छल कपट का बल, डंडे का बल गुंडों का बल। और यह बल का राज्य ही तो बलि राज्य है। यह 2500 वर्ष से द्वापर युग से चलता आ रहा है और आज हर कोई आत्मा विकारों के कारण आसुरी बल की बन गई है। राजा बलि ने तो कईयों को आप समान बनाया है रानी सरकार।
क्यों प्रशंसा पुत्र, ठीक है?
बिल्कुल ठीक है महारानी सरकार। देखा जाए तो सारा समाज ही आसुरी बल का प्रयोग कर रहा है। परिवार के सदस्य और परिवार के प्रमुख भी बल का प्रयोग करते हैं, एक दूसरों पर नियंत्रण बल से करते हैं। वैसे ही गुरु शिष्य, व्यापारी ग्राहक, अधिकारी कर्मचारी, नेता और जनता का है। किसी भी संबंधों में प्रेम का नाम मात्र भी उपयोग नहीं है। क्यों मुनिवर?
जिधर देखो उधर, यत्र तत्र सर्वत्र राजा बलि की महिमा है और इसीलिए वे चिरंजीव है। नारायण नारायण।
हम राजा बलि के शुक्रगुजार हैं, जो हमारे राज्य की सीमा बढ़ाने में आपने योगदान दिया है। देवर्षि, हमारे दूसरे अतिथि सत्कार मूर्ति चिरंजीव अश्वत्थामा का भी चरित्र सुनाया जाए।
नारायण नारायण। चिरंजीव अश्वत्थामा के बारे में जन मान्यता है और शास्त्र सम्मत भी है कि आपका जन्म महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के घर हुआ। मित्र दुर्योधन को दिए हुए वचनों अनुसार पांच पांडव समझकर अर्जुन के पांचों पुत्रों का नींद में ही आपने वध किया। अर्जुन ने क्रोधित होकर इनसे युद्ध किया और बाणों से घायल करके इनका मस्तक मणि ही निकाल दिया। परंतु वे चिरंजीव होने के कारण अभी तक मरे नहीं है। जख्मों को भरने के लिए तेल के लिए फिरते रहते हैं। शर्म के मारे वे कभी आमने सामने नहीं आते हैं। अभी भी श्रद्धालु लोग जमीन पर तेल गिर गया तो उठाते नहीं। समझते हैं अश्वत्थामा के काम में आएगा। बेचारा दुखी है, क्यों ज्ञानेंद्र?
मुनिवर, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे अस्वस्थ आत्मा के ही दर्शन होते हैं। तन की चिंता, मन की चिंता, धन की चिंता, संबंध निभाने की चिंता, सभी चिंता में डूबे हुए हैं, सभी चिंता मनी बन गए हैं। आज हम हैं, कल हमारा क्या होगा पता नहीं, इसी बात से अस्वस्थ है। अमीर गरीब, डॉक्टर मरीज, विद्यार्थी शिक्षक, गृहस्थी हो या सन्यासी, सभी स्वस्थ रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लोग किसी न किसी दुर्व्यसनों से जकड़े हुए हैं, समझते हैं हम सुख भोग रहे हैं, लेकिन ये भोग ही उन्हें भोग रहे हैं। भोगान भुक्ता यमतेव भुक्ता, भोगान याति यमतेव याता। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों ही स्वस्थ होते हैं और यहाँ कलयुग में दोनों ही अस्वस्थ है। आसक्ति व इच्छा की लगी जख्म को स्नेह रूपी तेल की अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य को एक समय का भोजन नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन प्यार के दो शब्द जरूर चाहिए। कहते हैं ना, गुड़ नहीं दो लेकिन गुड़ के जैसा मीठा तो बोलो। स्नेह, प्रेम, शांति, करुणा, दया, क्षमा, इन मूल्यों के अभाव में सभी घुटन महसूस कर रहे हैं। अभी तक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का रास्ता उसे नहीं मिला है, वह वन वन भटक रहा है, फिर भी शांति वन के गेट तक वह नहीं पहुंचा है। और जब तक माया का राज्य है तब तक अश्वत्थामा चिरंजीव है। वो देखो, वो चिरंजीव अश्वत्थामा वहाँ खड़ा है। चिरंजीव अश्वत्थामा की
जय हो।
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 यही तो माया की खासियत है ज्ञानेंद्र। हम अपने मकसद में कामयाब हुए। जो खुद को सतयुग में स्वस्थ समझते थे, हमने उनको भी ईश्वर को पुकारने के लिए मजबूर कर दिया। हम ही सर्वशक्तिवान है, हमसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता।
नारायण नारायण। रानी सरकार, बस इतनी सी बात पर खुशी का आक्रोश? आपने कृपाचार्य की कमाल तो सुनी ही नहीं।
अच्छा, उन्हें सस्पेंस में रखा है क्या? सुनाइए सुनाइए, हम भी उनकी कमाल और धमाल सुनने के लिए उत्सुक है।
हमारे तृतीय सत्कार मूर्ति आदरणीय चिरंजीव कृपाचार्य, जिनकी बहन कृपी से गुरु द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था, इसीलिए गुरु द्रोण के समान आप भी दुर्योधन के पक्ष में खींचे गए। भाग्यवश इन्हें भी चिरंजीव भव का वरदान प्राप्त हुआ। ये अमर है, मगर इन्हें देखने के लिए चाहिए ज्ञान की तीसरी आग। क्यों ज्ञानेंद्र?
हाँ मुनिवर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो भी महाभारत के नाम हमने सुने हैं, वह किसी व्यक्ति के नहीं लेकिन सामाजिक वृत्ति के प्रतिनिधि के स्वरूप के नाम है। दुर्योधन वह जो सत्ताधन, स्त्रीधन, ज्ञानधन, शक्तिधन, पितृधन आदि सभी धनों का जो दुरुपयोग करता है। दुशासन, जिसका शासन दुष्टता पर आधारित हो, दुर्व्यवहार पर आधारित हो, वह दुशासन। ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन, वैसे ही कृपाचार्य अर्थात कृपा का आचरण करने वाले, कृपा पर जीने वाले। आज मैं जिस तरफ भी देखता हूँ तो मुझे कृपाचार्य ही नजर आते हैं। नेता की तरफ देखो तो मतदाताओं की कृपा पर जीने वाले, और मतदाता है नेता की कृपा पर जीने वाले। देवताओं की मूर्ति को देखो तो भक्तों की कृपा पर जीने वाले, और भक्तों को देखो तो देवताओं की कृपा पर जीने वाले। कर्मचारी अधिकारी की कृपा पर, और अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी की कृपा पर, वरिष्ठ अधिकारी सचिव की कृपा पर, और सचिव मंत्री की कृपा पर, मंत्री मुख्यमंत्री की कृपा पर, और मुख्यमंत्री राज्यपाल की कृपा पर, और राज्यपाल राष्ट्रपति की कृपा पर जीते हैं। वाह, कितनी अच्छी माला बन गई है कृपाचार्यों की। वैसे ही व्यापारी ग्राहक की कृपा पर, और ग्राहक व्यापारी की कृपा पर, बच्चे माँ बाप की कृपा पर और माँ बाप बच्चों की कृपा पर, पति पत्नी की कृपा पर और पत्नी पति की कृपा पर जीती है, चोर पुलिस की कृपा पर और पुलिस थानेदार की कृपा पर जीते हैं, कोई भक्त हनुमान की कृपा पर, हनुमान राम जी की कृपा पर और राम शिव जी की कृपा पर जीते हैं। सभी का आचरण देखो, एक दो के कृपा पर ही चलने वाला है, इसलिए मुझे कृपाचारी ही दिखाई देते हैं। बोलो चिरंजीव कृपाचार्य की
जय हो,
चिरंजीव कृपाचार्य की
जय हो।
नारायण नारायण, सचमुच आप तो ज्ञान की बरसात करने वाले ज्ञानेंद्र हो।
आज हम धन्य धन्य हो गए यह राज सुनकर।
रानी सरकार, अभी अभी इंटरनेट पर यह संदेश आया है कि विभीषण, हनुमान, परशुराम और व्यास ये चारों चिरंजीव किसी विशेष सेवा में व्यस्त होने के कारण इस समारोह में भाग नहीं ले सके, फिर भी इस समारोह के सफलता की मंगल कामना उन्होंने व्यक्त की है।
आपने जो हमारा सत्कार किया इससे हम बेहद प्रसन्न हैं।
अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे,
क्योंकि हम चिरंजीव हैं, अनंत काल तक जीने वाले, लेकिन हमें पहचानने के लिए चाहिए
ज्ञान की तीसरी आग। नारायण 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 नारायण।
मृगनैनी, हमने सारे विश्व का भ्रमण किया और महसूस हुआ कि आकाश को छूने वाली इमारतों में रहने वाले लोग स्वर्गीय सुख का आनंद ले रहे हैं और दूसरी ओर गरीब और ही दरिद्री नारायण बनते जा रहे हैं। एक ओर निश्चिंत जीवन, दूसरी ओर चिंता की चिता।
रानी सरकार, दोनों के बीच में अगर यह दरार बढ़ती गई तो हमारा क्या होगा? धनवान और ही धनवान बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और ही गरीबी की रेखा के नीचे दबे जा रहे हैं। गरीबी हटाओ या गरीब को ही हटाओ।
मृगनैनी, जरा अपनी तीसरी आंख से देखने की आदत बनाओ। तूने माया रानी का करिश्मा नहीं देखा? अरे, इतनी बड़ी सेना मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है? रागिनी, मोहिनी, शंखिनी, डंकिनी, कामिनी, द्याभिमानी, वाह, और ईर्षा द्वेष मत्सर जैसी उनकी बेटियाँ, कितनी बड़ी सेना है। और तू तो सदा मेरे साथ हो ना, तेरी एक नजर से ही तो कमाल होती है।
मेरी एक नजर से?
हाँ हाँ, सिर्फ तेरी एक नजर से। भक्त लोग कहते हे ईश्वर तेरी एक नजर से निहाल, और माया कहती है तेरी एक नजर से बेहाल। बेहाल जब बनते हैं तो लोग बार बार जेल बर्ड बन जाते हैं। तू तो शेरनी, वीरांगना, बहादुर हो ना, आखिर बेटी देह अभिमान की हो ना।
और मेरी बेटी ईर्षा जब जाग उठती है तो महलों में रहने वालों का सुख मिट्टी में मिला देती है।
बिल्कुल ठीक कहा। ईर्षा बेटी से मुझे रामायण की बात याद आई।
रानी सरकार, आज आपका मूड बड़ा ही खुशनुमा है, इसलिए आज मेरे दिल आपकी वीर गाथा सुनने की हो रही है।
आपकी दिल हो और मैं उसे टाल दूं? भला यह कैसे हो सकता है? मृगनैनी, देखो, ईर्षा बेटी ही रामायण की जड़ है। मंथरा दासी ने कैकेयी के मन में ऐसा जहर घोल दिया जो राम को वनवास मिला। कैकेयी के बुद्धि को मैंने भ्रष्ट किया। दूसरी बात सीता की, सीता ने भी मुझे नहीं पहचाना। ब्राह्मण भिक्षुक नहीं था, वह रावण था। माया को नहीं पहचाना इसलिए शोक वाटिका में जाना पड़ा, नहीं तो जंगल में भी मंगल था। मृगनयनी, अरे बड़े बड़े महारथी विद्वान भी मुझे पहचानने में गलती करते हैं, क्योंकि मेरी भूमिका अदृश्य है, गुप्त है, और जहाँ कमजोरी होती है वहाँ मैं सर्वव्यापक होती हूँ। शूर्पनखा का अपमान अर्थात मेरा अपमान जब हुआ, तब मेरे भाई रावण ने क्या किया पता है तुझे? सोने के हिरण पे सीता आसक्त हुई, बाद में उसे राम राम चिल्लाना पड़ा। वह हिरण भी मैं ही थी, समझी? अरे पूतना बनकर बाल कृष्ण को मारने के लिए मैं ही गई थी, कंस के मन में भी मैं ही व्याप्त थी। डर भी एक विकार है जो कंस को खाया जा रहा था कि उसकी मृत्यु देवकी के आठवें गर्भ से होगी। वह हिंसा भी मैंने ही उससे करवाई, बहन देवकी पर भी उसे रहम नहीं आया।
इसीलिए आप कहती थी अब मेरी बारी है, जो रावण के विरुद्ध सामना कर उसे युद्ध में परास्त करूं। ठीक है महारानी, माया के राज्य में रिश्तों का कोई मोल नहीं, बहनें भी भाइयों को संपत्ति के लिए कोर्ट में खींचती है। अच्छा, महाभारत में भी आपकी जबरदस्त भूमिका है, वह कैसे?
लगता है आज तेरे मूड को जैसे बाहर आई है। तो सुनो, द्रौपदी ने जब दुर्योधन को अंधे की औलाद अंधा कहा, तब मैं ही द्रौपदी के जबान पर बैठी थी, जिससे महाभारत हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, शंतनु सत्यवती पर मोहित हुआ, वहाँ मेरे कामिनी ने चाल चली और भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत का केंद्र बिंदु बन गया। कर्ण ने भी सत्य को पहचानने के बाद असत्य का पक्ष लिया, अधर्म का पक्ष लिया, मित्रु प्रेम जागृत हुआ ना, वहाँ मोहिनी ने उसे मोह लिया, बेचारा दुर्योधन के एहसान से दब गया। बुद्धिवान लोगों के बुद्धि को माया ने ही गोदरेज का ताला लगाया था, अगर मैं नहीं होती तो हस्तिनापुर हंसता खेलता नाचता रहता था, लेकिन भावी को कुछ और ही मंजूर था। धृतराष्ट्र, धूर्त राजा, पुत्र मोह में अंधा होने के कारण पंडु पुत्र भीम को मीठी मार कर खत्म करना चाहता था, इतना प्रभाव है मोह माया का। यह मेरा सूक्ष्म लेकिन विकराल रूप जो भले भले ज्ञानी भी नहीं समझ सकते, क्यों मृगनयनी?
मैं तो आपकी चरित्र गाथा सुनकर दंग रह गई, सचमुच आपका कार्य क्षेत्र बड़ा विशाल है। धन्य हो गए आज मेरे एकान, बहुत ही बेहतरीन बहत का खेल खेला है आपने।
रामायण और महाभारत के एक एक दृश्य में मेरा कितना गुप्त पाठ था, इसका वर्णन करूं तो दिन और रात भी कम पड़ जाएगी।
नहीं नहीं, विश्व आपका गुणगान न करे यह हो ही नहीं सकता, आपका रंग रूप रौनक थपका देकर कौन मोहित नहीं होगा।
फिर भी मेरा रूप नहीं है, भक्त कहते हैं हे ईश्वर रूप बदल कर आओ, और जब वह आता है तो कोई विरला ही उसे पहचानता है। वैसे ही मैं जब रूप बदल कर आऊं तो मुश्किल ही मुझे पहचानते हैं, सभी देह के धर्मों में खुद को भूल गए हैं, माया ने उन्हें अज्ञान की निंद्रा में सुला दिया और भुला दिया कि तुम एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हो, बेचारे एक दूसरे से लड़ने लगे हैं।
रानी सरकार, अधर्म की चरम सीमा पर सभी खड़े हैं।
यही तो महारानी के राज्य की शोकांतिका है।
नारायण नारायण।
आइए मुनिवर, आज अचानक कैसे आना हुआ?
नारायण नारायण, आज संसार में सब कुछ तो अचानक ही हो रहा है ना। महाराज रावण ने भी आपसे ईर्ष्या करने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी, वे तो सप्त चिरंजीव सत्कार वर्ष मना रहे हैं। नारायण नारायण।
अच्छा,
ओ
और आपसे युद्ध करने की तैयारी भी कर रहे हैं। उनकी सीमा पर सारा सैन्य बल उन्होंने तैनात कर दिया है। महारथी कामदेव, क्रोधाग्नि, लोभनाथ, मोहंती और देहंकार तो रावण के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत में भगवान का अवतरण हुआ है।
अवतरण अवतरण, रावण से तो हम निपट लेंगे, लेकिन देवर्षि, ये अवतरण की बातें कुछ अटपटी सी लगती है।
नारायण नारायण, क्यों? शास्त्र अनुसार यही तो धर्म ग्लानी का समय है। धर्म के नाम पर हिंसा, सिद्धांतहीन राजनीति, प्रेम रहित प्रभुत्व, विवेकहीन आनंद, सदाचारहीन व्यापार और मानवता शून्य विज्ञान, ये सब बातें क्या सूचित करती है? अपने ही कुल का विनाश करने के लिए वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े बॉम्ब्स मिसाइल बनाए हैं। यही तो यादव के पेट का मुसल है। वर्तमान समय अब कयामत का समय चल रहा है। खुदा अल्लाह गॉड आकर जन्नत बहिष्त की स्थापना कर रहे हैं और महाराजा रावण भी सत्ता की बागडोर आपके हाथ से छीनने की तैयारी कर रहे हैं। नारायण नारायण।
बस बस करो मुनिवर, बहुत सुन लिया। अगर आपकी जगह और कोई दूसरा होता तो उसकी जबान खींच लेते। रावण और विद्रोह।
आप भले ही अज्ञान निद्रा में सो जाओ, कराटे मारो, विजय उत्सव मनाओ, सत्कार समारोह मनाओ, लेकिन हमने तो अपना काम कर दिया। अब हम जा रहे हैं। नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण नारायण
नारायण। आओ प्रकृति, काफी उलझन में दिखाई देती हो, क्या बात है?
रानी सरकार, आज मेरे सहयोगी तत्व मुझे सवाल पूछ रहे हैं। क्या ऐसी दुर्दशा करने हमें इस राज्य में लाया गया?
सहयोगी तत्व और दुर्दशा, बड़ी समस्या है। प्रकृति, हमारे होते हुए सबकी ग्रह दशा ही बदल जाती है। वैसे तो हमें किसी की शिकायत सुनने की आदत नहीं है, लेकिन द्वापर और कलयुग में तुमसे जो हमें सुख मिला है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सभी भौतिक सुखों में लिप्त और आसक्त है, जिसकी वजह से माया 10 दिशाओं में व्याप्त है।
लेकिन अभी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सभी तत्व मुझसे नाराज है महारानी।
नाराज तो वही होगा ना जो राज को नहीं जानता होगा। लेकिन
नहीं महारानी, पृथ्वी पर दिन ब दिन पापों का बोझा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए धरती ने भी एक दो जगह भूकंप करके मुझ पर अपना गुस्सा उतार ही दिया। खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल भारी मात्रा में हो रहा है। जल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि कहीं कहीं पानी पीने लायक भी नहीं रहा है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से तो लोगों का दम घुट रहा है। शुद्ध हवा न मिलने से सभी अस्वस्थ हो गए हैं। सूरज आग उबाल रहा है। ओजोन को छेद गिरने के कारण सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आने से अनेक बीमारियों की आशंकाएं बढ़ गई है। आकाश में अणुयुद्ध से पर्यावरण को खतरा निर्माण हो रहा है। एंथ्रेक्स फैल रहा है।
आखिर तुम कहना क्या चाहती हो?
अगर इन सब बातों पर आपका नियंत्रण नहीं रहा ना, तो इस राज्य का भविष्य अंधकार में है।
तो क्या तुम मुझे डराने आई हो, धमकाने आई हो?
नहीं नहीं महारानी, ऐसी गलतफहमी मत कीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपको वस्तु स्थिति की जानकारी देने आई थी।
जानकारी? क्या हम इस बात से अनभिज्ञ हैं, बेसमझ हैं?
नहीं नहीं महारानी, मैं अपना दुख आपको नहीं तो और किसको बताऊंगी? मुझे अब याद आ रहा है, जब मैं स्वर्ग में थी तो धरती से अनेक प्रकार के रस वाले स्वादिष्ट फल मिलते थे। फूल और पंछियों के आकार के पहाड़ थे। उस पहाड़ से जड़ी बूटी युक्त सुगंधित पानी से देवताएं स्नान करते थे। वायु सुबह सुबह पेड़ के पत्ते ऐसे हिलाता था जिससे कर्ण मधुर संगीत निकलता था और देवताएं जाग जाते थे। सूर्य भोजन तैयार करता था और 8 साल का बच्चा आकाश में हवाई जहाज का सफर करके आता था। बाहर स्वर्ग हेवन बहिष्ट पैराडाइज पहुंची हो ना स्वर्ग में।
नहीं नहीं, स्वर्ग तो हमारे लिए यहाँ ही है। ऐसी कल्पना की बातें मुझे मंजूर नहीं।
आपके मंजूर होने से या ना होने से हकीकत में तो फर्क नहीं पड़ता ना।
अरे जब दुख होता है तभी सुख की कीमत मालूम होती है। माया के स्वर्ग में जो सुख है उसकी भेंट किसी से भी नहीं हो सकती। बड़े बड़े शहरों में देखो माया का कितना पॉम्प है। इसीलिए कलयुग में 600 करोड़ आत्माओं का वोट मुझे मिला है और स्वर्ग में सिर्फ 33 करोड़ देवताएं हैं। मतदान में किसका पलड़ा भारी है क्यों प्रकृति?
महारानी, आपके साथ बहस करके भला आज तक कोई जीता है? मैं तो सिर्फ इतना ही संकेत देने आई थी कि प्रकृति को बिस्किया के दुख देना बंद कीजिएगा। भले ही मैं स्वर्ग में दासी बन देवताओं की सेवा करती थी लेकिन उस सेवा में बहुत खुश थी। वह राज्य ही भगवान का बनाया था।
भगवान भगवान भगवान, इस राज्य के तो हम ही भगवान है। दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। जिसके पास बल है वह मालिक है। हमने ही अपवित्रता के बल से देवताओं का तख्ता ही पलटा दिया और आज वे साधारण मनुष्य बन गए।
नहीं नहीं, वह दिन भी दूर नहीं महारानी। यही मनुष्य जो स्वर्ग में देवता थे फिर से देवता बनने वाले हैं। यह तुम्हें चेतावनी नहीं है समझानी है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान अब पतित दुनिया को पावन बनाने का कार्य कर रहा है और उसके कार्य में मैं सहयोग जरूर दूंगी, क्योंकि भगवान के बच्चे राजयोग द्वारा मुझे शांति का दान दे रहे हैं। जो मुझे सुख शांति देगा मैं भी उनकी दासी बन स्वर्ग में सेवा करूंगी, उन्हें सुख और शांति दूंगी। यह तो कर्मों का लेखा जोखा है महारानी, समझे? नहीं समझेगी तू, नहीं समझेगी। लाख लाख कोशिश करने के बावजूद आपने हमारी बात नहीं मानी, अब इसका अंजाम भी देख लेना। आपने बड़े बड़े विद्वानों के बुद्धि को ताले लगाए लेकिन आज खुद के ही बुद्धि को गॉडरेज का ताला लग गया। यह तो समय समय की बात है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अलविदा 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 अलविदा।
मुझसे बदला लेगी? मुझसे बदला लेगी? अरे बदले की आग में एक दूसरे को जलाना यह तो महारानी की स्वाभाविक नीति और रीति है। मुझे समझाने आई थी। हे माया, तेरी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। तेरी लीला भी अपरम अपार है। चलो पहले हम रावण से निपट लेंगे, फिर हम अकेली विश्व महा सम्राज्ञी बनेगी। माया की सेनानी प्रमुख कमांडर मृगरेनी, सभी को तैयार करो। रागिनी मोहिनी शंखिनी दखिनी कामिनी देवीमानी, आक्रमण! यह कैसा युद्ध जो कई सालों से चल रहा है, घनघोर संग्राम। मेरे सैनिक हजारों बाणों से रावण को घायल कर रहे हैं फिर भी वह मरता ही नहीं है। हर वर्ष बड़ा ही होता जा रहा है। आपस में ही गृह युद्ध हो रहे हैं। कितना खूने नाहक खेल है। कामिनी ने कामदेव के नाक में दम कर दिया
मोहिनी ने मोहंती पर वार किया, आसक्ति ने लोभनाथ को जख्मी कर दिया, और देहाभिमानी ने तो अहंकार को ऊंची मंजिल से नीचे गिराकर चकनाचूर कर दिया। आतंकवादियों ने कितनों को शमशान घाट पहुंचा दिया। वाह मेरी सेनाओं, वाह! सत्ता को छीनने के लिए दोनों सेना का संघर्ष, कहीं यह महाभारत युद्ध तो नहीं? आपस में ही लड़ रहे हैं। वाह माया, तेरा भी जवाब नहीं तेरा भी जवाब नहीं। कितना भयानक दृश्य, जैसे कौरवों के अक्षौणी सेना के मुर्दे पड़ गए हैं। यादव सेना मिसाइल छोड़कर अग्नि की वर्षा करके सब कुछ उध्वस्त कर रही है। प्रकृति का भी विनाश के लिए सहयोग, उसने तो माया के साथ विद्रोह किया है। बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं और समुंदर तो जैसे ऊंची ऊंची लपटों से बड़े बड़े शहरों को अपने पेट में ले रहा है। मूसलाधार बारिश हो रही है और वायु तो जैसे कब्रस्तान की सफाई कर रहा है। तुम कौन? प्रकृति?
माया, यहाँ सदाकाल के लिए किसी की जीत नहीं हो सकती है।
अब तुम यहाँ किस लिए आई हो?
ये मेरे सहयोगी तत्व, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, जिन्हें तुमने दुख दिया है, अब तेरा अंत करने आए हैं। भावी के आगे तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। झूठी माया, झूठी काया, तेरा झूठा सब संसार, यह तो तेरे राज्य की होलिका बनाएंगे और तू इसमें स्वाहा हो जाएगी। मुझे शंकर जी ने आह्वान किया था माया, तीसरी आँख खोल कर, और मैं उनके साथ तांडव नृत्य करने के लिए हाजिर हुई। अब तेरी कोई खैर नहीं।
पवित्र किरणों से मेरा तन बदन जला जा रहा है, मैं कमजोर होती जा रही हूँ, मेरी शक्ति नष्ट होती जा रही है, मैं नष्ट होती जा रही हूँ, मैं नष्ट होती जा रही हूँ, मैं नष्ट।
अरे ये तो बेहोश हो गई। हाँ यह वही फरिश्ते हैं जो तुम्हें मुक्ति देने आए हैं। जब यह फरिश्ता से देवता बन जाएंगे तब मैं इनकी दासी बन सेवा करूंगी। यह पुष्प माला लेकर मैं यहाँ खड़ी हूँ और इनके संपन्न देवता बनने का इंतजार करती हूँ।
कल्याणकारी कौन?
एक शिव परमात्मा।
कल्याणकारी कौन?
एक शिव परमात्मा।
कलयुग जा रहा है,
सतयुग आ रहा है।
कलयुग जा रहा है,
सतयुग आ रहा है।
सब सत्यों में सत्य महान,
शिव है गीता का भगवान।
सब सत्यों में सत्य महान,
शिव है गीता का भगवान।
नारी का उद्धार,
स्वर्ण युग का द्वार।
नारी का उद्धार,
स्वर्ण युग का द्वार।
ओम शांति। भाइयों और बहनों, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से यह वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन महिलाओं को आध्यात्मिक नैतिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने का कार्य यह ब्रह्मा कुमारी संस्था 65 वर्षों से कर रही है, लेकिन वह स्वर्ग का गेट कैसे खोलती है यह देखने के लिए चाहिए तीसरी आंख। नारियों के बारे में समाज में जो गलत धारणाएं हैं उन्हें मिटाना पड़ेगा। नारी नरक का द्वार, वह पीटने लायक है, उपभोग्य वस्तु है, आदि आदि। कुछ महात्माओं ने तो कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस मत प्रवाह को हमें दुरुस्त करना होगा। वह अगर नागिनी सर्पिनी है तो पुरुष नाग और सर्प नहीं है, दोनों ही पतित पने के लिए जिम्मेवार है, फिर नारी ही सर्वदोषी क्यों? आज शिव परमात्मा ने सिखाए हुए राजयोग द्वारा वह पतित आत्माओं को सच्ची ज्ञान गंगा बन पावन बनाने की सेवा कर रही है। आध्यात्मिक जागृति लाकर सामाजिक नैतिक मूल्यों की स्थापना करने की सेवा करना सर्वोच्च समाज सेवा है। शिवशक्ति पांडव सेना महिला रैली की प्रमुख ब्रह्मा कुमारी विजय बहन जी हमारे सामने अपने विचार रखेंगे।
ओम शांति। अभी आपने भाई ज्ञानेंद्र के विचार सुने, लेकिन इस नारी मुक्ति आंदोलन के अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वहाँ सुख शांति की बंसी बजती है। जिसके हाथ में झूले की रस्सी होती है वही विश्व का उद्धार कर सकती है। अभी नारी अबला नहीं लेकिन सबला है, कामिनी नहीं लेकिन कल्याणी है। ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति पांडव सेना का उद्देश्य नारी के प्रति जो गलत दृष्टिकोण है उसे मिटाकर सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता शक्ति अवतार क्यों कहते हैं? जरूर उन्होंने शिव से शक्ति लेकर विकारों रूपी रावण पर और माया से जीत पाई है। आप भी विकारों रूपी असुरों का अर्थात रावण का संहार करके सच्चा सच्चा दशहरा अर्थात विजयादशमी मना सकते हैं। यह नाटक अब अंतिम चरण में चल रहा है। महाभारत के सभी पात्र यहाँ मौजूद हैं, तो जरूर गीता का भगवान भी अवश्य होगा। उसने ही गीता का ज्ञान देकर इस संस्था की स्थापना की और यह तीसरी सेना शिव शक्ति पांडव सेना का निर्माण विश्व कल्याण के लिए किया। तीनों ही सेनाएं यहाँ विद्यमान हैं, कौरव, यादव और पांडव। अब तीसरी आंख खोलकर आपको ही निर्णय लेना है कि इस महाभारत लड़ाई में किसका पक्ष लेना है, कौरवों का, यादवों का या अहिंसक पांडवों का। जिसका साथी पांडवपति भगवान शिव है उसकी विजय निश्चित है। यह वही झंडा जो विश्व में सुख शांति प्रदान करेगा। तो आइए हम सब मिलकर ऐसा श्रेष्ठ समाज निर्माण करेंगे जिसमें शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता हो। नर नारायण बने और नारी लक्ष्मी बने। ऐसी शुभ भावना रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।